हनुमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी जिज्ञासु स्वाध्यायी भाई बहनों, आप सबने आज उनके मुख से सुना है प्रवचन निर्देशिका के बारे में, जिन्होंने स्वयं इसका निर्माण किया है। हमने उन पूर्वाचार्यों को नहीं देखा, आचार्य कुंद अकलंक देव, उमा स्वामी, समंत भद्र आदि आचार्यों को नहीं देखा, उनके ग्रंथों को पढ़कर उनकी महिमा समझ सकते हैं, लेकिन आज हम उन्हें अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, जिन्होंने इन आचार्यों के पथ का अनुसरण करके और आगम परंपरा के अनुसार ही अपनी लेखनी को चलाया और धर्म को भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के रूप में विश्व के क्षितिज पर स्थापित करने का जो श्रेय ज्ञानमती माता जी को है, वह 20वीं सदी में, मैं समझती हूँ 20वीं और 21वीं सदी में शायद ही कोई कर पाया। जैन धर्म की अनादि निधनता, जैन धर्म की सार्वभौमिकता और हमारे तीर्थंकरों की प्राचीनता का संदेश उन्होंने इतिहासकारों तक पहुंचाया कि जैन धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की, न महावीर स्वामी ने और न आदिनाथ भगवान ने। जैन धर्म अनादि निधन है, शाश्वत है, इसे ना कोई स्थापित कर सकता है, ना किसी ने किया और ना कोई इसे नष्ट कर पाएगा। उसके लिए समाज से लेकर संसद तक आवाज पहुंचाई, छोटी पुस्तकों से लेकर NCERT के विद्वानों तक, लेखकों तक उस आवाज़ को पहुंचाया कि आप अगर जैन धर्म के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं तो आपको जैन धर्म के विषय में लिखने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी धर्म हो जिसके बारे में हम डीपली जानते नहीं हैं, उस धर्म के विषय में हम वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को बता करके, अब प्रवचन निर्देशिका की बात ही आप सुन रहे हैं, इसमें आप देखें कि हमारे आचार्यों ने जिस वाणी को जिस क्रम से कहा है उसी क्रम का निरंतर अनुसरण किया है कि आज जिन प्रथमानुयोग के ग्रंथों को अनुपयोगी कह दिया जाता है, चाहे जब उनको नकार दिया जाता है, उनकी बातों को जो हमें नहीं अच्छी लगी या जो हमारे अनुकूल नहीं हुई उन्हें तुरंत आगम के प्रतिकूल कह दिया जाता है, ये तो कथा कहानी है। कथा कहानियों के अंदर भी बड़ा दम होता है। अगर किसी चीज़ को हमें प्रतिपादित करना है, किसी विषय को, तो उसके लिए भी कथा कहानी की आवश्यकता पड़ती है। भाई हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मार्ग पर चलो, तो उस पर कौन चले थे और कौन भटक गए थे, किन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, ये कथा कहानी नहीं तो और क्या है। आज हम अयोध्या की गलियों से जब पांच भगवंत जो यहाँ पर जन्मे हैं उनके जन्मस्थल टोंक तक जाते हैं, पूरे रास्ते भीड़ से भरे पड़े हैं, हर गली हर कूचा यहाँ राम नाम से गूंज रहा है। अब क्या है कि इतने सारे लोग हैं, आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि सब लोग केवल बस नाम ही ले रहे हैं। न जाने कितने लोग राम के जीवन से आदर्श भी तो लेते हैं। और राम की धरती पर ऋषभ देव का बिगुल बजाने के लिए ज्ञानमती माता जी आई और वो कहती हैं कि देखो, धर्म एकांगी नहीं होता है, धर्म वही है जो सर्वोदयी होता है, प्राणी मात्र का हित करने वाला होता है, वह धर्म है। आज धर्म को जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन धर्म की ये व्याख्या पर्याप्त नहीं है। जाति अलग है, धर्म अलग है। जाति माता पिता के कुल वंश से संबंधित होती है और धर्म धारण करने की वस्तु है। जो धर्म तिर्यंच पशुओं ने भी धारण किया और उनका कल्याण हो गया। इसी प्रवचन निर्देशिका के पेज नंबर 186 पर आप खोल करके देखिए कि खदीर सार भील को मुनि ने नमस्कार करने पर आशीर्वाद दिया और धर्म लाभ हो ये पूछा भील ने, धर्म लाभ हो ये आशीर्वाद दिया भील ने पूछा, भगवान धर्म क्या है? तो मुनिराज ने कहा, मध्य मास मधु का सेवन करना पाप है और इसको छोड़ देना धर्म है। उस धर्म की प्राप्ति ही धर्म लाभ है। एक भील को भी क्या कहा, धर्म लाभ हो। आशीर्वाद का भी क्रम होता है। जैसे धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ भील आदि होते हैं, उनको धर्म लाभोस्तु आशीर्वाद देते हैं। जो उससे थोड़े आगे बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं कि बोधि लाभोस्तु। ऐसे अनेक प्रकार से जब गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद का अर्थ भी जानने की जब उस व्यक्ति की इच्छा होती है, बस वहीं से उसका कल्याण प्रारंभ हो जाता है। पुरुरवा नाम के भील ने भील की पर्याय से महावीर तक की यात्रा को संपन्न किया और इस खदीर साल भील ने एक महात्मा जी मुनिराज के कहने से उसने केवल कौवे के मांस का त्याग किया। कौवे के मांस का त्याग करने के प्रभाव से वो आगे जा कर के और राजा श्रेणिक हो गया। राजा श्रेणिक कौन थे? मगध सम्राट। राजा श्रेणिक कौन थे? भगवान महावीर के समोसरण के प्रमुख श्रोता। राजा श्रेणिक कौन थे? आगे आने वाले काल में इसी अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर बनकर जन्म लेने वाले वे महान राजा हुए। और महावीर भगवान से उन्होंने 60,000 प्रश्न किए थे। आज जितना वांग्मय है, जितनी जिनवाणी है, सब कुछ तो राजा श्रेणिक के प्रश्न के आधार पर जो उन्हें उत्तर मिले और गौतम गणधर ने उन्हें बताया, वही आज चारों अनुयोगों की जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। समझ गए? ऐसा उन्होंने पुण्य अर्जित किया कि महावीर स्वामी के समोसरण में ही धर्म को सुनते सुनते क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन जो कभी भी अब छूटेगा ही नहीं, मोक्ष जाने तक, अनंत काल तक उनकी आत्मा के साथ रहेगा। तो ये क्या है? ये प्रथमानुयोग के उदाहरण है। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो समझो कि शीशे में देखकर हमने अपने मुख की कालिमा को नहीं धोया, या आदर्श मिव अर्थात महापुरुषों के चारित्र को, प्रथमानुयोग को दर्पण के समान कहा है। दर्पण में जब मुख देखते हैं तो दर्पण ये बताता है कहाँ आपके तिल है, कहाँ आपके कालीमा लगी है, कहाँ क्या है। दर्पण पोछता नहीं है, दर्पण केवल दिखाता है। और ये जिनवाणी का दर्पण, प्रथमान योग का दर्पण हमें महापुरुषों के चारित्र को दिखा करके, वह ये नहीं कहता आप इनके चारित्र को देख करके अपने मुख की कालीमा को, अपनी आत्मा की कालीमा को पोछ लो। उसे पढ़ करके तो स्वयं व्यक्ति अपने अंदर झांकता है। क्या थे राम, क्या थे ऋषभ देव, कौन था खदीर सार भील और कौन थे राजा श्रेणिक, उनके कथानकों को जब सुनते हैं तो एक क्षण को हर व्यक्ति के मन में आता है, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? और जहां ये प्रश्न आया कि मैं भी ऐसा बन सकता हूं, बस समझ लो वहीं से कल्याण प्रारंभ हो गया। आप ज्ञानमती माता जी को सुनते हैं, अगर आपके मन में क्षण भर के लिए भी ऐसा आ गया कि क्या ज्ञानमती माता जी के जैसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो सकता है, होगा, क्यों नहीं होगा। आप ज्ञानमती माते के लिखे ग्रंथों को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे जा करके वो ज्ञान आपको केवल ज्ञान तक को प्राप्त कराने में सक्षम हो सकता है। त्यां धर्म के मर्म को जब बताया तो यही कहा कि मद्य मांस मधु के त्याग को धर्म समझो। हे भव्यात्मन, इस प्रकार से जब भील को समझाया तो वह सोचता है कि कोई मेरी बहुत बड़े हितैषी हैं, उसको बहुत हिलाया डुलाया सबने कि आज कौए का मांस खा ले, आगे जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा फिर से त्याग कर देना। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैंने गुरु से जो नियम लिया है, प्राण चले जाएं लेकिन उस नियम को तोड़ना नहीं है। और उसने नियम का निर्वाह किया तो पहले तो भील से मर करके और जा करके देवता बन गया, और देवता बन करके पुनः आगे आकर के सम्यक्त्व को ग्रहण करके आगे क्षायिक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक बन के आने वाले काल में तीर्थंकर बन गए। तो आप सोचो इससे ज्यादा दर्पण हमारे लिए क्या हो सकता है कि एक भील जो रात दिन केवल मांसाहार करता था, शिकार करता था जंगल के अंदर जा करके, और उसने अगर एक गुरु का जरा सी देर के लिए सत्संग कर लिया तो उसने तीर्थंकर का पद प्राप्त करने के लिए उसके कदम बढ़ गए आगे। तो हम भी जब कोई संत मिले तो निश्चित रूप से सत्संग करें। आप सबके लिए ही ये सुबह से लेकर शाम तक हम कभी क्लास चलाते हैं, कभी प्रवचन करती हैं माता जी, कभी आपको अभिषेक यानी भक्ति गंगा में स्नान करने का मौका मिलता है, कभी सायंकाल में आप आरती करते हैं, हमारी बहन जी आपसे प्रश्न भी पूछती हैं, शांति भक्ति का पाठ भी चलता है, इन सब में जुड़िए आप। कभी पारस चैनल के माध्यम से, कभी आदिनाथ चैनल जो गूगल मीट पर आपको उपलब्ध कराया गया है, इसके साथ भी जुड़ने में आपका फायदा ही फायदा है। शाम को जब शांति भक्ति आप सुने तो शांतिपूर्वक एकदम शांति के साथ आपका रात्रि का सपना भी साकार हो जाएगा, अच्छे अच्छे सपने आएंगे, शुभ रात्रि रहेगी, मंगल प्रभात हो जाएगा, तब आपका पुनः दैनिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से आप निरंतर गुरुवाणी को श्रवण करते रहें और हम भी आपको श्रवण कराते रहेंगे, और आपकी परीक्षा कल हम तारीख निश्चित करके घोषित कर देंगे। 5 जनवरी के बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। इन दोनों अध्यायों को हम परिपूर्ण करके और प्रवचन निर्देशिका को बिल्कुल आपको आत्मसात करा देना चाहते हैं। केवल 2 अध्याय की परीक्षा होगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरे प्रवचन निर्देशिका के अंदर से भी 2-4 प्रश्न और भी होंगे, इसलिए आपको एक बार पूरी प्रवचन निर्देशिका और भी खंगालनी पड़ेगी, यानी कि उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपकी प्रवचन निर्देशिका की परीक्षा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। यही जिनवाणी माता के स्वाध्याय का सार होता है कि ज्ञान निरंतर वृद्धिंगत होता चला जाए। तो अब